السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. उम्मीद है कि आप लोगों ने कोशिश की होगी अपना हिसाब किताब करने की, अपना मुहासबा करने की, और लिखा होगा कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे अपने अंदर से निकालनी है, और कौन सी चीज़ें नेकी की ऐसी हैं जो अभी तक मैं नहीं कर सकी और मैंने वो करनी है। आहनफ बिन कैस ताबई थे, उनके मुतलक बयान किया जाता है कि उनकी इबादत का ख़ास वक्त रात का होता था। जब सब लोग मीठी नींद सो जाते थे तो वो अपने रब के हजूर हाजिर होके इजहारे बंदगी करते और उस वक्त अपने आमाल का जायज़ा लिया करते, और चराग जला के उसकी लौ पे उंगली रखते थे और अपने नफ्स से मुखातिब होके कहते थे, बता तुझको फलां काम करने पर किस चीज़ ने आमादा किया। हज़रत उमर के बारे में भी ऐसे ही आता है, वो इसी तरह किया करते थे और फरमाया करते थे कि ए नफ्स, क्या तू इस हाल को बर्दाश्त कर सकता है? क्या तू इसके ऊपर सब्र कर सकता है? तो हमें ये देखना चाहिए इन्हीं दिनों के अंदर अपने मुहासबे में कि कौन से काम ऐसे हैं जो हमसे छोड़े नहीं जाते, तो क्या इन कामों के साथ, इन गुनाहों के साथ हम अल्लाह ताला का सामना कर सकेंगे, और क्या हम ये आग बर्दाश्त कर सकते हैं जो दुनिया में, अगर ये नहीं बर्दाश्त कर सकते तो आखिरत की कैसे बर्दाश्त करेंगे। मुजद्दद अलफसानी रहिमहुल्लाह फरमाते थे कि जिस गुनाह के बाद निदामत हो अंदेशा है, जिस गुनाह के बाद निदामत ना हो अंदेशा है कि वो इस्लाम से बाहर ना कर दे। यानी गुनाह के बाद निदामत ज़रूरी है, गुनाह के बाद उसका एहसास ज़रूरी है। ये ज़रूरी है कि इंसान सोचे कि ये जो मैंने किया ये सही नहीं किया, उसके अंदर एक शर्मिंदगी हो। ये अगर नहीं होती तो अल्लाह ना करे ऐसा हो कि इंसान फिर गुनाह पे दलेर होता चला जाए और गुनाह उसकी आदत बन जाए और फिर वो छोड़ने से भी छूटे ना, बहुत देर हो जाए और इसी में मौत आ जाए। तो निदामत क्या चीज़ है? वो अफसोस, वो पशेमानी जो गुनाह के बाद होनी चाहिए, वो हसरत कि काश मैंने ये ना किया होता। जब तक दिल की हालत ऐसी रहेगी, गुनाह के बाद अज़ियत रहेगी, तब तक इस्लाह की गुंजाइश है, तब तक तौबा इस्तिग़फ़ार की तरफ इंसान आ सकता है। मगर जब इंसान ढिटाई की उस मंजिल पे पहुंच जाए ना कि खराबियां करता जाए और उसको ज़रा भी एहसास ना हो, तो उसकी इस्लाह के रास्ते भी बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं। तो ये महीना रमज़ान का जो है, ये तौबा इस्तिग़फ़ार का महीना है, ये अपने रब को मना लेने का महीना है, ये रब की तरफ लौट आने का महीना है। तौबा का मतलब ही है लौट आना, कि इंसान जब गुनाह करके अल्लाह ताला से दूर हो जाता है तो अब वो तौबा करके वापस पलट आए, वापस लौट आए, जिस रब को उसने नाराज़ कर दिया अपने गुनाह की वजह से, अब वो अपनी इस्तिग़फ़ार और तौबा की तलब के बाद अपने रब को राज़ी कर ले। तो इस महीने के अंदर तो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा माफ़ करने के लिए तैयार है। ये वो महीना है जिसको कहा ही गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रमज़ान पा ले और इसमें अपनी बख्शिश ही ना करवा सके वो तो हलाक हो गया, बर्बाद हो गया। यानी इतनी बख्शिश का महीना इसमें, जिसमें हर कदम कदम के ऊपर मौका है कि इंसान अपनी बख्शिश करा ले, उसमें भी अगर वो महरूम रह जाता है तो फिर और इसकी बख्शिश कब हो सकती है? जब रब की रहमत इतनी जोश में, भी वो इस्तेफार ना करे, तब भी वो इस तरफ को ना आए, तब भी वो अल्लाह ताला के आगे गिड़गड़ाए नहीं, रोए नहीं, अपने गुनाहों पे माफी ना मांगे, तो वो बड़ा खसारे में है। तो इसलिए इस महीने में बहुत ज्यादा तौबा इस्तग़फार की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर उकबा बिन आमिर हाजिर हुए और अर्ज किया, निजात हासिल करने का क्या तरीका है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी जुबान पे काबू रखो और अपने घर में अपने लिए गुंजाइश रखो और अपने गुनाहों पर रोया करो। यानी जब गुनाह हो जाए तो उसके बाद इंसान को रोना आए कि ये मैंने हरकत क्यों की, इतनी निदामत होनी चाहिए, इतनी पशेमानी, इतनी शर्मिंदगी होनी चाहिए। इस्तेफार का मतलब क्या होता है? अल्लाह ताला से गुनाहों की बख्शिश मांगना। कि इस चीज के ऊपर आराम से नहीं बैठ जाना कि फिर क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है इससे, ये जो जुमला है ना, क्या फर्क पड़ता है। या इसी तरह सारे लोग ही करते हैं, फिर क्या हो गया, या ये कहना ये कौन सा बहुत बड़ा कोई गुनाह है। ये सब चीजें बताती हैं कि इंसान के अंदर पशेमानी नहीं है, वो इस चीज को कुछ नहीं समझता, वो गुनाह करके भी इस चीज के ऊपर ओके है, राजी है कि अगर हो गया तो बस ठीक है, हो ही जाता है। मैं कौन सा कोई अनोखी हूं जिससे कोई गुनाह हुआ है, ये तो होता ही है, कौन गुनाहों से पाक है, लिहाजा मैंने भी कर दिया तो क्या हुआ। अल्लाह अकबर। जैसे मैंने आपको पहले भी बयान किया है कि तौबा में देर करना ना इंसान की नेकी की तौफीक छीन लेता है, फिर नेकी करना मुश्किल हो जाता है जब इंसान तौबा की तरफ नहीं आता। वो अपने गुनाहों के ऊपर अगर पशेमान ही नहीं है, वो गुनाहों के ऊपर रोता ही नहीं है, तो फिर नेकी भी उसके लिए मुश्किल होती जाती है। इसलिए कि अब गुनाह उसके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं रहेगा। तो गुनाहों को बड़ा समझना चाहिए, किसी गुनाह को ना सोचे कि ये बहुत छोटा है, इससे क्या फर्क पड़ता है, और मैंने कौन सा कोई कबीरा गुनाह कर दिया। हम तो कबीरा के ऊपर ही सोचते हैं, हालांकि ये नहीं सोचते कि गुनाह चाहे छोटा हो, लेकिन ये तो देखें कि कितने बड़े रब की नाफरमानी है ये। और हमें हमारी छोटी मोटी कोई इधर उधर नेकी हमने कर ली हो तो वो ही तसल्ली देती रहती है कि मैं वो नेकी भी तो करती हूँ, अगर गुनाह भी कर लिया साथ साथ तो क्या हो गया। ऐसे ही है जैसे इंसान अच्छा खाना भी खाए और साथ जहर की चुटकी भी भरता जाए, तो जहर एक दिन उसको मार देगा। तो अब वो अच्छा खाना खा रहा है लेकिन उसको भी वो जाया कर देगा अगर वो साथ जहर भी खाता जाएगा। तो ये गुनाह, बाज गुनाह तो ऐसे होते हैं, वो नेकियों को चाट जाते हैं, नेकियों को खत्म कर देते हैं। तो ऐसे गुनाहों से बचना चाहिए। और इवन नेकी भी कर रहे हो तब भी नेकियों के ऊपर कोई गुरूर ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर में हर नमाज के बाद, सलाम फेरने के बाद हम क्या कहते हैं, क्या सिखाया, अल्लाहु अकबर, और उसके बाद 3 दफा अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। क्यों, हमने नमाज ही तो पढ़ी है, कौन सा कोई गुनाह किया। हम तो कोई गुनाह देख के कहते ना अस्तग़फिरुल्लाह, कैसा गुनाह करें, तो अभी हमें क्या जरूरत है कि हम इस्तग़फार करें। दरअसल कोई भी नेकी जो इंसान कर लेता है वो भी पता नहीं कितनी कमियों कोताहियों के साथ है, कितनी दफा नमाज में इधर उधर ख्याल भटकता है, ध्यान भटकता है। तो कोई भी नेकी इस तरह से नहीं हम कर पाते जैसे अल्लाह ताला की शान के लायक है। तो अल्लाह हमें माफ कर दे, ये तेरी शान के लायक नहीं। दूसरी ये बात कि नेकी की है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, अल्लाह तेरी ही दीवी तौफीक से ही की है। तो अपनी बड़ाई का एहसास ना कहीं आने पाए कि मैं तो बहुत बड़ी चीज हो गई। बल्कि नेकी करने के बाद भी यही एहसास रहे कि अल्लाह तूने करा दी, तेरा शुक्र है, मैं कहाँ इस काबिल हूं, मुझे माफ कर दे, मैं तो बड़ी गुनाहगार हूं। तो लिहाजा नेकी के बाद भी, इवन हज के बाद भी अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, सुम्मा अफीदू मिन हैथ अफाद नास वस्तग़फिरुल्लाह। जब आप लौटो तो फिर वहीं से लौटो जहां से लोग लौटते हैं, और क्या सूरह बकरा में, इस्तिग़फार करो, हज पे इस्तिग़फार करें। हज के बाद, हज तो बड़ा नेकी का काम है, इबादत कर रहे हैं, किस बात पे इस्तिग़फार करें। तो नेकी के बाद भी इस्तिग़फार की जरूरत रहती है, क्योंकि हमारी नेकी कभी भी इतनी अच्छी नहीं होती कि हम कहें कि बहुत मतलब आला पाए कि हमने नेकी कर दी और इससे बढ़ के क्या और चीज़ हो सकती थी। नहीं, इसमें भी कमियां, इसमें भी कोताहियां। तो हमेशा नेकी करके भी अल्लाह ताला से बख्शिश का सवाल करते रहें, और गुनाहों के बाद तो हमेशा ही माफी मांगनी है, और कभी गुनाहों को हल्का ना समझें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन अपने गुनाहों को ऐसे देखता है जैसे पहाड़ के नीचे बैठा हो, कि उसको डर है कि पहाड़ उस पर आ गिरेगा, और बदकार अपने गुनाहों को ऐसे देखता है जैसे नाक पे बैठी हुई मक्खी, कि बस ऐसे इशारे से उड़ा दूंगा। तो जो वाकई मोमिन है ना, वो तो अपने एक एक गुनाह से लरजां रहता है कि कहीं इसका अजाब मेरे ऊपर ना आ पड़े, डरता रहता है कि इस दुनिया में भी कहीं मेरे ऊपर अजाब ना आ जाए, और आखरत में कहीं इसकी वजह से मैं नाकाम ना हो जाऊं। उसको गुनाह सताता है, कोई बदअमली है वो उसको चैन से नहीं बैठने देती, वो बेखौफ नहीं होता कि अजाब की परवाह ही ना करे, बल्कि हमेशा नादम रहता है। अल्लाह अकबर, निदामत भी तौबा की एक किस्म ही, निदामत नहीं होगी तो फिर तौबा क्या, निदामत होनी चाहिए, पशेमानी होनी चाहिए। तो तौबा इस्तिग़फार करते रहें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 70 से 100 मरतबा तौबा किया करते थे, और जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कामिल इंसान कोई और नहीं, और हमने तो पता नहीं कितने ऐसे गुनाह किए हैं जिनका हमें याद तक नहीं, बाज़ याद है बाज़ तो याद भी नहीं होते कि कितने कर चुके हैं। इसीलिए अगले पिछले तमाम गुनाहों के ऊपर अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए, जानते बूझते जो किए और जो अनजाने में किए उन पे भी माफी मांगनी चाहिए, जो भूल गए और जो याद है उनके पर भी माफी मांगनी चाहिए। तो इसलिए माफी को अपना मामूल बना लें कि हमने तौबा इस्तग़फार करनी है, और कभी ना ऐसे सोचें कि एंड में जाके तौबा कर लूंगी, बाद में तौबा कर लूंगी, कोई वक्त आएगा जो हमने अपने जहन में रखा हुआ है उस वक्त तौबा कर लूंगी। तो तौबा में जल्दी कीजिए, अल्लाह ताला की जनाब में तो एक भी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए, जितने उसके एहसानात हैं हमारे ऊपर, हमें तो हर वक्त उसकी इबादत में लगे रहना चाहिए था, हमारा मकसद हयात ही यही है कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें, मगर हम नहीं कर पाते, बहुत सी कमियां हैं हमारे अंदर, तो हम बख्शिश का सवाल तो करते ही रहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान चाहता है कयामत के दिन वो अपना नामा आमाल देख के खुश हो जाए, उसको चाहिए कि तौबा इस्तग़फार ज्यादा करे। तो अगर हम चाहते हैं ना कि उस दिन हम अपनी बुक खोलें, तो उसके अंदर हम देख के आमाल को खुश हो जाएं, तो तौबा इस्तग़फार को ज्यादा बढ़ा दें। और अगर भूल जाता है तो एक वक्त बांध लें दिन में कि मैंने इस वक्त तौबा जरूर करनी, चाहे वो आप रात का आखिरी हिस्सा ले लें, दिन का कोई वक्त ऐसा ले लें जिसमें कि आप फोकस कर सकते हो, जिसमें कोई इधर उधर से डिस्टर्ब करने वाला ना हो, उस वक्त तौबा इस्तग़फार करें। तो इसलिए तौबा इस्तग़फ़ार में हमेशा जल्दी करनी चाहिए, और एक वक्त अगर बांधा होगा तो ज़रूर आप उसमें तौबा कर लिया करेंगे। और फिर इस तरह से ये नहीं होगा कि पता नहीं आखिरी दिन तक अपने लगे रहे, कि आखिरी दिन आ जाए ज़िंदगी का और उस वक्त ख्याल आए कि तौबा मैंने करनी थी और भाई मुझे तो तौबा की मोहलत ही ना मिली। नहीं, अगर रोज़ाना की आदत होगी ना तो दुनिया से जाने के वक्त में भी आप तौबा कर पाएंगे इंशाल्लाह। आप उस वक्त भी पाक साफ होंगे गुनाहों से, क्योंकि आपने उस दिन में तौबा की होगी। और ये भी तो देखे ना कि ये नहीं हमें पता कि कौन सा लम्हा कबूलियत का हो जाए, तो हम जिस वक्त तौबा इस्तिगफार करते हैं हो सकता है वही दुआओं की कबूलियत का टाइम हो, और उस वक्त हम दुआ करके ये इस्तिगफार मांग के गुनाहों की माफ़ी चाह के अल्लाह ताला से और कामयाबी हासिल कर लें और गुनाहों से पाक साफ हो जाएं। और कई मौाक़े तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हमें बताए हैं कि उन मौाक़े पे आप तौबा करें तो आपकी तौबा कबूल होगी, जैसे कि रात का आखिरी पहर है उसमें तौबा कबूल होगी। कई आमाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे बताए हैं कि इन अमलों को करोगे तो आपके पिछले गुनाहों की बख्शिश हो जाएगी, तो वो अमल करने से ही बख्शिश हो जाती है। एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान तक के दरमियान के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, एक जुमे से दूसरे जुमे के दरमियान के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, एक नमाज से दूसरी नमाज के दरमियान के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इसी तरह इंसान जब खाना खाता है उसके बाद अगर वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत'अमनी हादा हादा तआम व रज़क़नी मिन गैरी हौलि मिन्नी वला कुव्वतिन, तो इंसान के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। आप देखें कि ऐसे अमलों को तलाश करें जिनके बाद गुनाहों की बख्शिश हो सकती है कुछ कहने से। तो ये आपने एक कलमा कहा अल्हम्दुलिल्लाह का, इससे ही गुनाहों की बख्शिश हो जाती है। तो बाज़ गुनाहों की इससे बख्शिश हो जाती है, बाज़ गुनाह जो इंसानों से मुतल्लिक आपने किए हैं, जैसे कि मसलन है कि किसी के साथ कुछ ज्यादती कर दी, कुछ किसी के हक मार लिया, उसके ऊपर उन लोगों से भी माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। तो उनको भी हम देखें, जब हम मुहासबा करते हैं तो हमने यकीनन देखा होगा कि किन लोगों के साथ हमने कुछ ऐसा मामला किया है कि जिससे शायद उसकी दिल आज़ारी और हो गई हो, या उसको मैंने कोई नुकसान पहुंचाया अपनी ज़ात से, अपनी ज़ुबान से या अपने हाथ से, तो उन मामलात में भी अल्लाह ताला से बख्शिश मांगे और उस शख्स से भी जाके माफ़ी मांगे कि मैंने आपकी दिल आज़ारी फ़लां वक्त में की थी, मुझे याद आ गया। अगर याद नहीं है तो वैसे ही माफ़ी मांग लें कि अल्लाह ताला जिस जिस का भी मैंने दिल दुखाया हो, ऐ अल्लाह ताला तुझे मुझे माफ़ कर देना, मैं नहीं जानती, अनजाने में किसी के साथ कोई ज़्यादती कर ली, अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देना। इसी तरह अगर किसी का हक मारा हुआ है, माली तौर पे कोई है, तो वो माल उसको वापस करें और उससे माफ़ी भी मांगे, क्योंकि जो लोगों के साथ मामलात हैं इनमें उनसे माफ़ी मांगना ज़रूरी है। और कभी अपनी नेकियों को इतना बड़ा ना समझे कि कोई बात नहीं है कि मैंने अब मैं नेकी करती ही हूँ ना तो अब ये वाले चीज़ें सारी मतलब ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगी, गुनाहों का कोई मसला नहीं है, कोई किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए इस जोम में रह के गुनाहों के से पशेमानी या गुनाहों के से बख्शिश मांगने से पीछे ना रहें। ये तो अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है हमारे ऊपर कि उसने तौबा का दरवाज़ा हमारे लिए खुला रखा हुआ है और इसको बंद नहीं कर दिया, सारी ज़िंदगी ये दरवाज़ा खुला रहता है, सारी ज़िंदगी, चाहे बुढ़ापा भी आ जाए तब भी खुला रहेगा, चाहे इंसान गुनाहों के इतने अंबार इकट्ठे कर ले कि वो आसमान तक पहुंच जाए तब भी अल्लाह ताला तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं करता, वो रहमान और रहीम है। यही तो उसकी मग़फ़िरत और उसकी रहमत के इजहार है कि वो इंसान के लिए ये दरवाज़े खुले रखता है। इंसान सोचता है ना अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है तो चलो वो खुद ही माफ़ कर देगा, यानी जैसे कि मैं गुनाह करता जाऊँ ऑटोमेटिक माफ़ी होती जाएगी, ऑटोमेटिक तो नहीं है। आप कुछ करेंगे, बख्शीश मांगेंगे, कोई निदामत दिखाएंगे तो ही है ना। अल्लाह ताला ने फरमाया वो तूबू इलल्लाही जमीअन, तो सब के सब तुम तौबा करो। नसूहा की तरफ अल्लाह ताला ने दावत दी है कि तुम सब तौबा करो, वरना क्या जरूरत थी ये कहने की। तो इंसान सोचते ना बस कोई बात नहीं, अल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह गफूर रहीम है वो ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपने कितनी दफा माफी मांगी, आपने कितनी दफा हिर्स दिखाई कि अल्लाह मुझे माफी की जरूरत है। तो इसके अंदर देर ना करें, हर दिन अल्लाह ताला से बख्शिश मांगे, और ये ना कभी सोचें मैंने कौन सा ऐसा बड़ा गुनाह कर दिया कि मैं इतनी माफी मांगू, मैंने कौन सा ऐसा कोई बुराई का काम कर दिया। नहीं, बल्कि हमेशा अपने गुनाहों को बड़ा ही समझे, ज्यादा ही समझे। मोमिन तो नेकी करके भी उसके बाद भी सोचता है कि मैंने कोई नेकी नहीं की, उसको बड़ी नहीं सोचता। और हम गुनाह करके भी सोचे कि कोई बड़ी बात ही नहीं। तो जो मुत्तकी परहेजगार अल्लाह से डरने वाला होता है ना, वो नेकी करके भी डरता है, हम गुनाह करके भी ना डरे। तो कभी भी गुनाहों के बाद दलेर ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तूबा है, खुशखबरी है उसके लिए जो अपने आमालनामे में बहुत ज्यादा इस्तगफार पाए। इस्तगफिरुल्लाह करने के बड़े फायदे हैं, बड़ा अल्लाह ताला से माफी मांगने के हमें ही फायदे। अल्लाह ताला ने फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज्जिबहुम व अंत फीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज्जिबहुम वहुम यस्तगफिरून। अल्लाह ताला इनको अजाब नहीं देगा जब तक कि ए नबी आप इनमें, और अल्लाह ताला इनको अजाब नहीं देगा जब तक ये तौबा इस्तगफार करते रहते। तो तौबा इस्तगफार करते रहने से क्या फायदा कि अल्लाह ताला का अजाब नहीं आएगा। तो अल्लाह ताला का अजाब तभी आता है जब इंसान तौबा इस्तगफार करने से दूर हो जाता है। और कभी तो शैतानी मायूस करने लगता है कि अब क्या फायदा तौबा करने का। नहीं, कभी अल्लाह ताला की रहमत से मायूस होके ना जाए कि अब तो मैंने इतना बड़े बड़े गुनाह कर दिए, अब छोड़ो तौबा करने को। शैतान ने जब कहा था अल्लाह ताला से कि या अल्लाह मुझे तेरी इज्जत की कसम है मैं इब्ने आदम को गुमराह करता रहूंगा जब तक इनकी जान जिस्मों में, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझे भी मेरे इज्जत और जलाल की कसम है मैं इनको माफ करता रहूंगा जब तक कि ये मुझसे मगफिरत मांगते रहेंगे। ऑटोमेटिक नहीं है, जब आप मगफिरत मांगेंगे अल्लाह माफ करेगा। ठीक है, तो ये तो अल्लाह ताला जिसको तौफीक दे दे तौबा करने की, ये भी अल्लाह ताला का इनाम है। तो शैतान का वार ना चलने दे, अपने लिए भी तौबा करें और अपने बड़ों छोटों के लिए भी तौबा करें, अपने जिंदों और मुर्दों के लिए भी तौबा करें। और अल्लाह ताला तो इंसान के गुनाहों को तब भी माफ करने पर कादिर है और फरमाता है मैं माफ कर दूंगा चाहे इंसान के गुनाह इतने हों कि जमीन से लेके आसमान तक का खला जितना है उसके गुनाहों से भर जाए, तब भी अल्लाह ताला फरमाता है मेरा बंदा मुझसे बख्शिश मांगता है तो मैं उसको बख्श देता हूँ, और मुझे जरा भी परवाह नहीं है कि भी इतने गुनाह कर लिए या बूढ़ा हो गया अब तुझे याद आया। ये इंसान होते हैं जो ऐसा कहते हैं कि अब तुम्हें याद आ गया माफी मांगने का, आप कि माफी मांग के देखें किसी से, पहले 10 ताने सुनाएगा, पहले बातें सुनाएगा, और कहेगा कि आपको अब याद आया। अल्लाह ताला ये नहीं फरमाता कि अब तुम्हें याद आ गया तौबा करना, नहीं, बल्कि वो माफ कर देता है जब तक इंसान अल्लाह ताला के साथ शिर्क ना करता हो, अल्लाह ताला उसको माफ फरमा देता है। तो लिहाजा माफी मांगे, बांध ले दिन में मैंने कितनी दफा माफी मांगनी, आज मैंने कितनी दफा मांगी है, 70 से 100 दफा तो मेरे नबी मांगा करते थे, मैंने कितनी दफा मांगनी, चलो उसको बढ़ा के मैं 150 कर लूं, 200 कर लूं, मगर 100 से तो ज्यादा ही करूं, क्योंकि हमारे गुनाह ज्यादा हैं। बल्कि जब आप सजदे में जाए तो उस वक्त भी इस्तिग़फ़ार करें। सजदे की एक तस्बीह ये भी आती है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे, सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फिर ली। तो ये भी तस्बीह आती है कि सजदे में जाके दुआ वैसे भी कबूल होती है, आपको ये नहीं आती, तो कोई और दुआ मांग ले, मसलन अल्लाहुम्मा इन्नका अफुवन तुहिब्बुल अफ्वा फ़ाफ़ुनी, ये मांग ले, ये तो सबको आती है, अस्तग़फिरुल्लाह कह दे। तो चूंकि सज्दे में दुआएं कबूल होती हैं, तो इसलिए उस वक़्त भी तौबा इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। और इसी तरह नमाज में भी सलाम फेरने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ सिखाई है, इतनी प्यारी दुआ है, इसको याद कर लें, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में से एक दुआ है, और ख़ास तौर पे सलाम फेरने से पहले की है। ये भी चूंकि दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है कि इंसान ने पूरी नमाज पढ़ ली, अब अल्लाह ताला से कनेक्शन जुड़ा हुआ है, अब डिसकनेक्ट होने से पहले यानी सलाम फेरने से पहले पहले उसने तौबा इस्तग़फ़ार की, कैसे, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, ए अल्लाह मैंने अपनी जान पे बहुत जुल्म कर दिया। गुनाह करके इंसान जुल्म ही करता है, वला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फिर ली, ए अल्लाह गुनाहों को कोई माफ़ नहीं कर सकता मगर तू, तो तू मुझे माफ़ कर दे, फ़ग़फिर ली मग़फिरतम मिन इंदिक, अल्लाह अपने पास से मुझे माफ़ी दे दे, वरहमनी अल्लाह मुझ पर रहम फरमा दे, इन्नका अंतल गफूर रहीम, बेशक तू बहुत माफ़ करने वाला रहम करने वाला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला आए थे और पूछा था, या रसूलुल्लाह मुझे कोई दुआ बताएं जो मैं अपनी नमाज में मांगा करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई थी। तो अम्बिया के बाद जो सबसे बेहतरीन इंसान है वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला हूँ, उनको ये दुआ सिखाई गई और उन्होंने ये दुआ मांगी, तो हम सबको भी ये दुआ मांगनी चाहिए। तो जब ये आप इस्तग़फ़ार करेंगे ना, तो यकीन जाने इतने इसके फायदे हैं, गुनाह तो बख्शे जाते ही हैं मगर हर गम से निकलने का भी रास्ता है इसके अंदर, और अल्लाह ताला रिज्क भी देता है वहां से जहां से इंसान का गुमान भी नहीं होता, ये गारंटी दी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर तंगी से निकलने का रास्ता हो जाएगा। तो इस्तिग़फ़ार, उसके बहुत सारे फवायद हैं, इस्तिग़फ़ार को जरूर लाजिम पकड़ लें। इसी तरह जो जिक्र मैंने आपको बताया भी था, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये जिक्र भी ऐसा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे दरख्त के पत्ते झड़ते हैं ना, इस तरह से जब देखे खिजा में दरख्त के पत्ते झड़ते हैं ना, इस तरह से इंसान के गुनाह भी झड़ते हैं इस्तिग़फ़ार से। और ये जो कलिमात हैं, जो सुबहानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, सहाबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपना बचाव कर लो, सहाबा ने पूछा किस चीज़ से, क्या कोई दुश्मन आ रहा है, आपने फरमाया नहीं जहन्नुम से अपना बचाव कर लो, तो सहाबा ने पूछा कैसे, तो फरमाया सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कह के। तो ये भी जो कलिमात हैं, ये भी जहन्नुम से निजात का जरिया बनते हैं, बचाव का जरिया बनते हैं, यानी अल्लाह के अजाब से बचने का जरिया बन जाते हैं, यानी ये भी इंसान को बचाने का जरिया है। तो अपनी बचत करना चाहते हैं हम, तो इस्तिग़फ़ार करें और ये कलिमात अपनी ज़ुबान पर जारी रखें, अल्लाह ताला हमसे कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हमें इख़लास अता फरमाए और हमारे इन छोटे छोटे कामों को भी कबूल फरमा ले। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक, सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।